पृष्ठ संख्या 58। अगला विषय समसामयिक उपभोक्तावाद और स्त्री। भूमंडलीकरण की एक देन वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति भी है। नव पूंजीवादी शक्तियों एवं उत्तर आधुनिक विमर्शकारों ने हाशिए की अस्मिताओं और संस्कृतियों पर विशेष बल दिया। आधुनिकतावादी सार्वभौमिकता एवं एकरूपता का स्थान विविधता और बहुलतावादी संस्कृति विमर्श ने ले लिया। समाज, राष्ट्र और नागरिकता भी टुकड़ों टुकड़ों में बट गई। दूसरे शब्दों में कहें तो विमर्श और अस्मितावादी राजनीति की शुरुआत हुई। यह सब कुछ बदलते वैश्विक परिदृश्य से ही संभव हुआ। राष्ट्र राज्यों की सीमाओं के कमजोर पड़ने से बाजार और विचार दोनों ही शक्तियों की पुरजोर आवाजाही शुरू हुई। उदारीकरण और उत्तर आधुनिक अस्मितावादी चिंतन दोनों का प्रवेश भारत में 20वीं सदी के अंतिम दशक में तेजी के साथ हुआ। इन दोनों शक्तियों के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में जो एक नई संस्कृति विकसित हुई है वह है उपभोक्तावादी संस्कृति। इस संस्कृति में नागरिक का स्थान उपभोक्ता ने ले लिया है। राष्ट्र की अवधारणा पर प्रश्न उठाने के बाद सबसे पहले विश्व नागरिक की बात हुई और अब वैश्विक उपभोक्ता की बात हो रही है। पृष्ठ संख्या 59। उपभोक्तावाद यानी बाजार की प्रत्यक्ष सत्ता, बाजार के द्वारा संचालित मानव समाज, यानी अब हम चीजों को अपनी आवश्यकता के अनुसार नहीं लेते, बल्कि चीजें ही हमारी सारी आवश्यकताओं को तय करने लगी हैं। अधिक खरीददारी, अधिक अधिकार और सत्ता संपन्न होने की निशानी माने जाने लगी है। बाजार अपने इस कार्य के लिए मीडिया का भरपूर प्रयोग कर रहा है। वह संचार माध्यमों के द्वारा ऐसी मानसिकता तैयार करने में लगा हुआ है जिससे लोग विचार और स्वप्नहीन जीवन के आदी हो होकर बाजारोन्मुख हो जाएं, भौतिक इंद्रिय सुखों में ही असली सुख मानने लग जाएं। इस तरह उपभोक्तावादी नजरिए को फैलाकर सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों को खत्म करने की एक गहरी साजिश भी है। यह सब इसी ग्लोबल संस्कृति की देन है। अगला पैराग्राफ। बाजार अपने इस भोगवादी संस्कृति में विचार और मुक्तकामी चेतना का भी सहयोग ले रहा है। वह मीडिया के माध्यम से यह विचार फैलाने में लगा है कि असली सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुक्ति बाजार द्वारा ही संभव है, क्योंकि बाजार ना तो सांप्रदायिक है, ना नस्लवादी, ना सामंतवादी, ना लिंगवादी और ना ही किसी अन्य तरह का वर्चस्ववादी। यह पूरी तरह से समतावादी और लोकतांत्रिक है। इसके अलावा यह सबको समान अधिकार देता है। जो चीजों को खरीद सकता है वही उस चीज का मालिक है। अपनी क्रय और व्यापार शक्ति को बढ़ाने की सबको एक समान छूट है, वह चाहे स्त्री हो या दलित, यूरोपीय हो या गैर यूरोपीय। इस प्रकार देखने पर बाजार से अधिक उदारवादी और लोकतांत्रिक और कोई शक्ति नजर नहीं आती, लेकिन सच इसके एकदम उल्टा है। अगला पैराग्राफ। बाजार भी आज उतना ही शोषक है जितना कि पहले की अन्य सत्ताएं। आज बाजार किसी भी सत्ता के नियंत्रण से लगभग पूरी तरह बाहर हो चुका है, तो इसकी वजह यह उपभोक्तावादी संस्कृति ही है। इसका एक पहलू यह भी है कि व्यापार और मुनाफा धर्मी शक्तियों की जीत हुई। इस उपभोक्तावाद को बाजार की साजिश करार देते हुए अपने एक लेख में सुरेश पंडित लिखते हैं, डैश इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ऐसा क्यों है कि पश्चिम का विकसित सिनेमा मौत के तांडव के रूप में ही कोई भविष्य देखता है और ऐसा भविष्य नहीं देखता जिसमें दुनिया में सभी लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहें और किसी का शोषण और उत्पीड़न ना करें। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ यूटोपिया की ज़रूरत, लेख सुरेश पंडित, पृष्ठ संख्या 59। यानी मकसद साफ है, लोगों में भय पैदा करना और उससे मुक्ति के लिए बाजार में वस्तुओं की भरमार पैदा कर देना। एक ज़माने में धर्म भी यही करता था, धर्म और पाप की दुहाई देकर कर्मकांड करवाना और मुफ्त का अधिकार एवं सत्ता प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में यह भोगवाद भय और भयजनित विचार की देन है। एक युवा स्त्री के समक्ष पहले मुक्ति के विविध प्रस्ताव परोसे जाते हैं, उसके बाद उसके द्वारा अपनाई गई मुक्ति प्रणाली को ही उसके शोषण का हथियार बना दिया जाता है। पृष्ठ संख्या 60। उदाहरण के लिए, अगर एक स्त्री किसी ऑफिस में काम करती है तो वह आर्थिक रूप से मजबूत तो अवश्य हुई, लेकिन उस ऑफिस के कुछ और उसूल भी हैं जिन्हें मानना वहाँ के कर्मचारियों की अनिवार्यता है। यानी ऑफिस का अपना एक अलग कल्चर है जिसे आपको निभाना पड़ेगा। एक स्त्री इस कल्चर को निभाने के चक्कर में पूरी तरह संवरी, चुस्त दुरुस्त गुड़िया बन जाती है। वह सौंदर्य बाजार की गिरफ्त में आकर अपना वजूद ही, जो बनने की प्रक्रिया में था, खोने लगती है। मधुकिश्वर बाजार धर्मी सौंदर्य परिकल्पना और उसमें नारी समाज के फंसते जाने की विवशता पर टिप्पणी करती हुई ठीक ही कहती हैं कि डैश इन्वर्टेड कॉमा शुरू सौंदर्य प्रतियोगिताओं के साथ सौंदर्य का जो प्रतिमान पश्चिमी देशों से हमारे यहाँ आया है, उसका सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं है। वह तो नारी द्वारा खुद को बाजार में मानकीकृत उत्पाद की तरह पेश करने का एक तरीका है जिसमें कोई मानवीय पक्ष नहीं होता। एक ग्लैमरस गुड़िया की तरह अपने आप को परोसकर नारी खुद ही घृणा का पात्र बन जाती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ अश्लीलता पर हमला, लेख मधुकिश्वर, पृष्ठ संख्या 63। घर से बाहर स्त्री जो सोचकर निकलती है वह उसे नहीं मिलता। कैद और घुटन का भाव अगर चौखट के अंदर था तो बाहर का नज़ारा भी कुछ कम त्रासदमयी नहीं है। इस उपभोक्तावादी सौंदर्य बाजार पर प्रभा खेतान टिप्पणी करती हैं डैश इन्वर्टेड कॉमा शुरू उपभोक्तावाद ने औरत के लिए एक खूबसूरत जेल का आविष्कार किया है जिससे 70 के दशक की नारीवादी स्त्रियां मुक्ति चाहती थी। अपनी पुस्तक बैकलेस 1992 में प्रकाशित में सूसन फालूही कहती हैं कि बाजार संस्कृति को अपनाने का अर्थ हुआ स्त्री आंदोलन को कफन ओढ़ाना। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ मित्र, लेख प्रभा खेतान, पृष्ठ संख्या 23। सौंदर्य चेतना स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा हमेशा से अधिक रही है, लेकिन जो आज देखने को मिल रहा है सौंदर्य के नाम पर, वह पहले कभी नहीं देखा गया। यह सौंदर्य पूरी तरह बिकाऊ, उबाऊ और भड़काऊ है। सौंदर्य बाजार के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है जो पूरी तरह से ग्लोबल है। यह सौंदर्य चेतना सेक्स चेतना की पहली सीढ़ी है जिसकी अंतिम परिणति सेक्स बाजार है। यौन हिंसा उसी का एक रूप है। यौन हिंसा इस उपभोक्ता संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। गांव से लेकर महानगरों तक बढ़ती यौन हिंसा भूमंडलीय सौंदर्य चेतना का ही एक परिणाम है। एक ऐसी चेतना जिसमें एक स्त्री आकर्षक देह और यौन वस्तु है जिसका भोग किया जा सकता है उचित बाजार मूल्य चुकाकर। यह सौंदर्य और भोगवादी चेतना का ही परिणाम है कि कामकाजी महिलाएं अपने वेतन का एक तिहाई हिस्सा अपनी सुंदरता पर खर्च करती हैं। हेल्थ सेंटर, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी क्लिनिक और इन सब के ऊपर होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिताएं सब मिलकर ऐसा जाल बुन रहे हैं जो स्त्री को जितना फंसा रहा है उसका अस्तित्व उतना ही नष्ट हो रहा है। संदर्भ ग्रंथ 23, अश्लीलता पर हमला, लेख वंदना भारतीय, पृष्ठ संख्या 54। हाँ, यह बात जरूर है कि यह सब स्त्री अपने मन और इच्छा से ही कर रही है। पृष्ठ संख्या 61। अगला पैराग्राफ, लेकिन क्या सचमुच यह मन और अपनी इच्छा का ही मामला है, या इस सहमति के पीछे गहरी असहमति और मजबूरी का भाव है? भला कोई कैद कैसे पसंद कर सकता है? निश्चित ही इस कैद को ही मुक्ति बताने की गहरी चाल चली जा रही है। यह चाल किशोर स्त्री जीवन और युवा स्त्री जीवन को सबसे अधिक प्रभावित कर रही है। इससे स्त्री की आज़ादी परिवार और बाजार के बीच में से किसी एक के शोषण को चुन लेने तक सीमित रह गई है। भूमंडलीकरण देहवाद का जनक तो बना ही है, पोषक भी स्वयं है। दूसरे शब्दों में इन्वर्टेड कॉमा शुरू, भूमंडलीकरण ने लैंगिक परिप्रेक्ष्य को धता बताते हुए नारी मुक्ति आंदोलन के कमजोर आर्थिक पक्ष का फायदा उठाया और दावा किया कि वह बाजार के जरिए एक पावर वुमन का सृजन कर सकता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ भारत में भूमंडलीकरण, लेख अभय कुमार दुबे, पृष्ठ संख्या 34। अगला पैराग्राफ, जिस पावर वुमन और ब्यूटी विद माइंड की चर्चा यह बाजार कर और करवा रहा है, वह स्वयं भी दुष्चक्रों का पुलिंदा भर है। मुक्ति आंदोलन को सशक्तिकरण में तब्दील करना तथा ब्यूटी का बाजार बनाए रखते हुए औरत को भी माइंडेड धारक घोषित करना एक साजिश के तहत ही हो रहा है। साथ ही उन सब में स्त्री की सहमति की बात कहकर अपने को निर्दोष देखने की कोशिश भी एक पॉलिटिक्स ही है, जिसे समझना जरूरी है। 90 के दशक में पावर वुमेन के चरित्र को स्पष्ट करती हुई बस्ट पत्रिका की संपादिका लकी का कहना है कि इन्वर्टेड कॉमा, आज की स्त्री एक सबलीकृत इंसान की छवि पेश करना चाहती है। आज की नायिका रोती बिसुरती नहीं, वह शक्ति संपन्न है, सत्ता के साथ मोल भाव करने में सक्षम, वह सदाबहार दिखना चाहती है। इसके लिए वह डाइटिंग, कसरत, मालिश, नए से नए फैशनेबल कपड़े, गहने, सभी कुछ चाहती है। वह अपनी बेटी जैसी दिखना चाहती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ मित्र पत्रिका, लेख लकी, पृष्ठ संख्या 24। जबकि 70 के दशक में सिमोन ने लिखा था, डैश इन्वर्टेड कॉमा, चेहरे पर एक हल्की सी झुर्री, लिपस्टिक का होठों पर जरा सा छितरा जाना उसका सारा दिन खराब करने को काफ़ी है। स्त्री को यदि मुक्ति चाहिए तो पहले गहने, कपड़ों और प्रसाधन से मुक्ति मिले। ये तो बेड़ियां हैं जिन्हें अब तक अज्ञानतावश वह पहनती रही और वस्तु रूप में स्वयं को पेश करती रही। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही। अगला पैराग्राफ, अंत में यही कहा जा सकता है कि जिस उपभोक्तावादी संस्कृति का निर्माण इस भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, वह स्त्री के लिए ना तो पूरी तरह से जहर है और ना ही अमृत। देह तक वह जरूर सीमित की जा रही है, लेकिन व्यक्तित्व प्राप्ति के अवसर भी उसे मिल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 62। चुनाव की आज़ादी जरूर सीमित हुई, लेकिन जहां इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी, वहां कम से कम कुछ अधिकार और निर्णय लेने की आज़ादी उसे बाजार से मिल रही है। मीडिया अगर सौंदर्य की बेड़ियों में जकड़ रहा है, तो उससे मुक्ति की चेतना भी किसी न किसी रूप में उसे मिल रही है। अरुंधति राय, महाश्वेता देवी जैसी स्त्रियां भी इसी समाज में उपभोक्ता संस्कृति में नेतृत्व कर रही हैं। अतः समूचे परिदृश्य पर कुछ भी सीधा सपाट नहीं कहा जा सकता, विशेषकर स्त्री की गुलामी और आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में। यदि कहना ही हो तो यही कहना पड़ेगा कि अपनी तमाम कमियों के बावजूद स्त्री पहले से अधिक मुक्त हुई है, हो रही है, और इसमें इस बाजार का योगदान भी रेखांकन योग्य है। प्रभा खेतान के शब्दों में डैश इन्वर्टेड कॉमा, ऐसे उपभोक्तावादी सांस्कृतिक दौर में एक ओर यदि स्त्री की स्थिति मजबूत हुई है तो दूसरी ओर वह कमजोर भी हुई है। यदि एक ओर उसे धन कमाने के नए अवसर मिले तो दूसरी ओर पारंपरिक उद्योग बंद होने से पहले उसे ही निकाला भी गया। एक ओर सीधे बाजार से बातचीत कर रही है, विज्ञापन की दुनिया में मॉडल के रूप में उभरी है, सेक्स श्रमिक के रूप में अपनी पहचान मांगती है और उसको यह पहचान बहुतेरे देशों में मिली भी है, तो दूसरी ओर व्यवस्था उसे जीन्स की भांति खरीदने, बेचने या उसका उपयोग करने में पीछे नहीं रहती। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ, वैश्वीकरण के दौर में, लेख प्रभा खेतान, पृष्ठ संख्या 124।